स्नान शौचाभ्याम् संस्कारैस्तपसि जया शुध्यन्ति दानैः संतुष्ट्या द्रव्याण्यात्मात्मविद्यया कालेन स्नान शौचाभ्याम् संस्कारैस्तपसि जया शुध्यन्ति दानैः संतुष्ट्या द्रव्याण्यात्मात्मविद्यया कालेन स्नान शौचाभ्याम् संस्कारैस्तपसि जया शुध्यन्ति दानैः संतुष्ट्या द्रव्याण्यात्मात्मविद्यया कालेन स्नान शौचाभ्याम् संस्कारैस्तपसि जया शुध्यन्ति दानैः संतुष्ट्या द्रव्याण्यात्मात्मविद्यया कालेन स्नान शौचाभ्याम् संस्कारैस्तपसि जया शुध्यन्ति दानैः संतुष्ट्या द्रव्याण्यात्मात्मविद्यया माताजि कालेन स्नान शौचाभ्याम् संस्कारैस्तपसि जया शुध्यन्ति दानैः संतुष्ट्या द्रव्याण्यात्मात्मविद्यया कालेन समय आने पर स्थान तथा अन्य वस्तुएं पवित्र हो जाने पर स्नान शौचाभ्याम स्नान तथा सफाई के द्वारा शरीर तथा गंदी वस्तुएं शुद्ध होती हैं। संस्कार ही संस्कार द्वारा जन्म शुद्ध होता है। तपसा तपस्या द्वारा इंद्रियां शुद्ध होती हैं। इज्जया पूजा द्वारा ब्राह्मण शुद्ध बनते हैं। शुद्ध्यन्ति शुद्ध बनते हैं। दानै ही दान द्वारा संपत्ति शुद्ध होती है। संतुष्ट्या संतोष से मन शुद्ध होता है। द्रव्याणि सारी संपत्ति तथा गौएं भूमि तथा सोना आत्मा आत्मा शुद्ध बनता है। आत्मविद्या आत्म साक्षात्कार द्वारा अनुवाद और तात्पर्य स्वामी श्री भक्तिवेदांत स्वामी द्वारा हे राजन समय बीतने के साथ ही धरती तथा अन्य संपत्ति शुद्ध हो जाती है। स्नान से शरीर शुद्ध होता है। सफाई करने से स्वच्छ वस्तुएं स्वच्छ हो जाती है। अस्वच्छ वस्तुएं स्वच्छ होती है। संस्कार से जन्म शुद्ध होता है। तपस्या से इंद्रियां शुद्ध होती हैं तथा पूजा से और ब्राह्मणों को दान देने से भौतिक संपत्ति शुद्ध होती है। संतोष से मन शुद्ध होता है और आत्मा अर्थात कृष्ण भावनामृत से आत्मा शुद्ध होता है। तात्पर्य वैदिक सभ्यता के अनुसार वस्तुओं को किस तरह शुद्ध किया जाए इसके विषय में ही ये आदेश हैं। शुद्ध किए बिना प्रयोग की जाने वाली हर वस्तु हमें कलमश से युक्त कर देगी। भारत में 5000 वर्ष पूर्व गांवों तक में यथा नंद महाराज के गांव में भी लोग जानते थे कि वस्तुओं को किस तरह शुद्ध किया जाता है जिसके कारण वे कलमश रहित जीवन बिताते थे। ओम ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया। कालेन स्नान शौचाभ्याम संस्कारैस्तपसिज्यया शुद्ध्यन्ति दानैः संतुष्ट्या द्रव्याणि आत्मा आत्मविद्या। इस श्लोक में सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित महाराज को ये बता रहे हैं कि नंद महाराज ने जैसे भगवान श्री कृष्ण का आविर्भाव हुआ, तुरंत उन्होंने जात कर्म का संस्कार कराया। विष्णु आराधनार्थाय स्वपुत्रस्य उदयाय च, भगवान की प्रसन्नता के लिए और अपने पुत्र को खास आशीर्वाद कृपा मिले, इस भावना से। तो इस प्रसंग में सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि किस तरह से नंद महाराज को मालूम था कि हर एक वस्तु को कैसे शुद्ध करना चाहिए, क्योंकि जब शुद्ध चीजों को शुद्ध रखते हैं तो हम बीमार नहीं पड़ते। अशुद्ध चीजें उपयोग करते तो बीमार पड़ जाते हैं। अशुद्ध पानी पिया, सनातन गोस्वामी एक बार अशुद्ध पानी पी लिए, बीमार पड़ गए, जानते हैं। अशुद्ध वातावरण बीमार का कारण हो जाता। तो इसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि 5000 वर्ष पहले भी गांव में, गांव के लोगों को समझ आ जाता है कि थोड़ा अनपढ़ है, वो गांव में भी लोगों को इतने ज्ञान था, इतना वैदिक संस्कृति इतनी शक्तिशाली थी कि हर एक व्यक्ति को यह मालूम था कि कैसे हर एक चीज को शुद्ध रखा जाए ताकि हम शुद्ध बने, हम हमेशा शुद्ध रहे। एक्चुअली हम लोग भौतिक संसार में आए हैं क्योंकि कलमशों के कारण, तीन गुणों से कलमश हो गए, अभी अशुद्ध हो गया पूरा वादा। तो जीवन का उद्देश्य है शुद्ध रहना, शुद्ध होना। ऋषभदेव कहते हैं कि कौन सा पशु, पहला श्लोक तपस, नायम देहो देह भाजाम निलोके कष्टान कामान अरहते, तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम शुद्धे। बोले मनुष्य जीवन है तपस्या करने के लिए, क्योंकि भौतिक इंद्र तृप्ति सबको उपलब्ध है, पशुओं को भी उपलब्ध है, पर तपो दिव्यम पुत्र का, तपस्या तो सबको करना पड़ता है, भौतिक इंद्र तृप्ति प्राप्त करने के लिए भी तपस्या करना पड़ता है, पर तपो दिव्यम ऐसी तपस्या मनुष्यों ने ऐसी तपस्या के लिए है जिससे सत्वम शुद्धेत, अपने अस्तित्व को शुद्ध करो। किन चीजों से शुद्ध करो? आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौंतेय दुष्पुरेण अनलेन च। काम क्रोध लोभ मोह इत्यादि जो कामयेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव, तीन गुणों से हम ढक गए आवृतम, अब वो आवरण को हटाना है धीरे धीरे, चेतो दर्पण मार्जन। तो तपस्या क्या है? हर एक चीज जो हम हमले वातावरण में हमारा प्रतिक्रिया आदान प्रदान होता है, इंटरेक्शंस विद पीपल एंड विद थिंग्स, हर एक को कैसे हम शुद्ध रहे। जैसे एक डॉक्टर वार्ड के अंदर जाता है तो मालूम है कि मैं अगर दूषित वातावरण में रहूंगा तो मैं बीमार पड़ जाऊंगा, पर काम करना है, डॉक्टर है तो जाना ही पड़ेगा पेशेंट से मिलने के लिए। तो वो सबसे पहले ज्ञान प्राप्त करता है और अपने आप को शुद्ध रखता है ताकि वो कलमश न हो जाए। तो यहां इस श्लोक में बहुत सुंदर से सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बता रहे हैं, वैदिक संस्कृति में सबको मालूम था कि हर एक वस्तु को कैसे शुद्ध रखना चाहिए, हर एक चीजों को एक ही चीज तरह से शुद्ध नहीं रखा जा सकता। जैसे शुद्ध रखने के लिए अभी किसी के घर के बाथरूम में जाइए तो वहां दांतों को शुद्ध रखने के लिए पेस्ट रखा गया, ब्रश और पेस्ट, तो दांत साफ करने के लिए। अभी वो पेस्ट कपड़ा में धोने धोते नहीं हम लोग, कपड़ा धोने के लिए साबुन रखा गया, तो कपड़ा शुद्ध करने के लिए इंग्रेडिएंट दूसरा होता है, दांत शुद्ध करने के लिए अलग, शरीर शुद्ध करने के लिए अलग साबुन, कपड़े के लिए अलग साबुन। कितने सारे, मतलब हर एक अंग को शुद्ध करने के लिए अलग अलग घर को शुद्ध करना, अभी कुछ बर्तन साफ करना है तो उसके लिए हम साबुन, गर्म पानी में साबुन डाल के कुछ, अभी टेलीफोन को साफ करना है, माइक्रोफोन को करना है तो बच्चों को नहीं मालूम, वो क्या करेंगे, गर्म पानी लेंगे, साबुन डाल के उसको टेलीफोन को डुबा के रखेंगे। माताजी बोले क्यों, बोला आपने बोला सब शुद्ध करना है, तो उनको लगा कि साबुन लेके सबको शुद्ध करना, ऐसा नहीं है, हर एक चीज को शुद्ध करने का अलग अलग प्रोसेस, अलग अलग इंग्रेडिएंट्स होता है। पहले ये नहीं था, साबुन वाबुन नहीं था हमारे घर में, तेल लगाते उसके ऊपर वो शिका का पाउडर है वो लगा के तेल निकालने के लिए, तो अलग अलग, बाल साफ करने के लिए अलग इंग्रेडिएंट, शुद्ध रखने के लिए, तो इस तरह से। और आजकल अकॉर्डिंग टू मॉडर्न सिविलाइजेशन शुद्ध रखने का मतलब है बाहर से शुद्ध बस, पर वैदिक संस्कृति में इट वॉज ए सिस्टमैटिक साइंटिफिक टेक्निकल नॉलेज ऑफ हाउ टू क्लीन थिंग्स। शुद्धता क्या है, जैसे बंबई में, बेंगलोर में एक होटल है MTR, मावली टिफिन रूम, बहुत फेमस है वो, लोग लाइन में खड़े होते, एक एक घंटा अपॉइंटमेंट लेके आते वहां रहने के लिए, वहां खाने के लिए, मोस्ट क्लीन एंड मोस्ट टेस्टी, यहां तक कि एयरपोर्ट से उसको एक्सपोर्ट भी किया जाता है अलग अलग देशों में, वहां का डोसा, वहां का इडली वड़ा, जो वहां का सांबार पाउडर, और वहां इतना गर्व से लोगों को एंट्री जो है सामने से नहीं देते, पीछे से किचन से देते, ताकि लोग देख सकें कि कितना शुद्ध यहां बनता है, और हर एक व्यक्ति एकदम, नहीं तो होटल में तेल लगाने के लिए छोटा झाड़ू होता है, झाड़ू में से यहां एकदम सिस्टमैटिक, बड़ा सोफिस्टिकेटेड, पर पूरी दुनिया किचन में से जाती है, अशुद्ध हो गया ना उधर। और लोगों की चेतना क्या है, जो बनाता है खाना उसकी चेतना क्या है वो कौन देखता है, पर वैदिक संस्कृति में ऐसा नहीं, विषैला अन्न खाइले मलिन होय मन, दुष्ट मन होइले नाही कृष्ण रस स्मरण, हर एक चीज ध्यान देना पड़ता है, क्या शुद्धता है क्या अशुद्ध है, बहुत ही सिस्टमैटिक साइंटिफिक टेक्निकल है नॉलेज वैदिक संस्कृति में। और यहां बताया गया है किस तरह से क्या शुद्ध होता है, कालेन, कुछ चीजें सिर्फ समय से शुद्ध हो जाता है, सिर्फ समय जाने दीजिए। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर तात्पर्य में लिखते हैं क्या क्या काल से शुद्ध हो जाता है, रास्ता और स्नान घाट। रास्ते में क्या, पहले बैलगाड़ी जाते थे वहां गोबर डाल दिया, कुछ भी डाल दिया, अशुद्ध था, फिर गंदा हो गया, पेशाब कर दिया किसी ने, पर थोड़ा समय जाने दीजिए, धूप आएगा, हवा आएगा, सूख जाएगा, सब क्लियर हो जाता है, सिर्फ समय जान दो। वहां हर रोज कोई झाड़ू मारने वाला नहीं होता दुनिया भर के रास्ते में, अशुद्ध कैसे हो जाता है, अशुद्ध लोग करते हैं, पर मटेरियल एलिमेंट्स, धूप, हवा, पानी से अपने आप चीजें शुद्ध हो जाती है। बंबई में इसका अनुभव है हमारा, सुबह सुबह ट्रेन ट्रैक के बगल में वो पब्लिक टॉयलेट बन जाता है, और सुबह सुबह जब ट्रेन जाता है तो, पर दोपहर तक, शाम तक, अगले दिन सुबह तक, अगर धूप, हवा और पानी शुद्ध चीज नहीं करता तो एक साल के अंदर क्या होता हूं, क्या हमारा परिस्थिति होता। तो कालीन, काल के प्रभाव से कुछ चीजें अपने आप शुद्ध हो जाती है। ऑल इन स्नान, शरीर शुद्ध होता है स्नान से, न कि थोड़ा स्प्रे कर दिया सेंट। पाश्चात्य देश में वहां ठंडी है तो उतना पसीना नहीं छूटता, तो लोग स्नान ही नहीं करते। हमको लगता है कि स्नान नहीं किया कई लोग महीने भर, और कुछ लोग हॉस्टल में हम अनुभव किया है, हमने देखा है कि कई लोग जींस पहन लेते, वो जींस ऐसा है कि वो गंदा भी हो तो समझता नहीं है, एक एक दो दो महीना तक स्नान भी करने की जरूरत नहीं। स्नान कभी कभी नए साल के दिन स्नान, तो काले ना स्नान, स्नान से शरीर शुद्ध होता है। एक्चुअली तीन बार चैतन्य महाप्रभु तीन बार स्नान करते थे, सुबह, मध्याह्न और शाम को, कम से कम दो, अरे कम से कम एक बार दिन में। क्योंकि जैसे घर भी अगर खास करके मेन रोड के बगल में रहे घर, तो थोड़ा समय भी देख खिड़की खोल के रखा, एक गाड़ी गया तो धूल उठ के फिर से गंदा बैठता, तो हर रोज स्नान साफ करना पड़ता है। इसी तरह से जाते हैं, बाहर जाते हैं, धूल उड़ता है, पसीना छूटता है, खास करके ऐसा देशों में जहां धूप ज्यादा है पसीना छूटता ही है स्वाभाविक। तो स्नान स्नान से शुद्ध होते हैं। शौचाभ्याम, धोने से किसी चीजों को शुचि, साफ करना है, पानी द्वारा साफ किया जाता है, ये भी एक प्रथा है। पाश्चात्य देशों में पानी ठंडा रहता है इसीलिए वो टॉयलेट पेपर यूज करते हैं, नहीं पानी से ही साफ किया जाना है। इस तरह से बर्तन वर्तन साफ करना, तो शौचाभ्याम, हर एक वस्तुओं को साफ करने का एक वैदिक तरीका होता है। जैसे वो भी एक तरीका है, गोबर से साफ किया तो ही उसको फिर से उपयोग किया जा सकता है, तांबे के लोटे को अगर इस बार ऐसा किया तो, हर एक चीजों का शौचाभ्याम, कालेन स्नान शौचाभ्याम। तपस्या, तपस्या से इंद्रियां शुद्ध होती है, इंद्रियां दूषित है। इंद्रिया कैसे दूषित होती है, जब ध्यायतो विषयान पुंसः, जब इंद्रियां विषय वस्तु पे ध्यान करती है तो वो दूषित हो जाती है। और स्वाभाविक है कि दूषित होना, पर उसको शुद्ध कैसा किया जाए, प्रहलाद महाराज सुंदर से बताते हैं कि किस प्रकार मेरी इंद्रियां, आंख एक तरफ मुझे खींचे ले जा रहा है, कान मुझे एक तरफ खींचे ले जा रहा है, त्वचा एक तरफ खींचे ले जा रहा है, नाक एक तरफ मुझे खींचे ले जा रहा है, इस तरह से हर एक चीज मुझे अलग अलग, जिस प्रकार एक व्यक्ति के बहुत सारी पत्नियां हों और हर एक उसको एक एक और खींच रही है, सब जगह खींचा जा रहा है, ऐसी परिस्थिति है मेरी, मेरी छह इंद्रियां जो है मन के साथ अलग अलग और मुझे खींचे जा रहे हैं, तो उसको शुद्ध कैसा रखा जाए, और दूषित हो जाता है, इंद्रियां दूषित हो जाती है, तो इंद्रियों को शुद्ध स्वच्छ कैसा किया जाए, तपस्या। ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते, और वो तपस्या क्या है, ऐसे वस्तुओं के संपर्क में आने नहीं देना जो उसको दूषित करता है। इसीलिए कहा जाता है कि मांसाहार नहीं, नशा नहीं, क्यों, ये वस्तुएं जो है उसके संपर्क में आने से हम दूषित हो जाते हैं, और इसीलिए तपस्या है, चार नियमों का पालन करना ये तपस्या है, इंद्रियों को विषय वस्तु में न लाना, भले इच्छा हो पर न लाना, और सिर्फ न लाना न लाना, शबरी मुनि ने किया था, पानी में जाके बैठ गए थे वो, पर फिर भी अंदर से वो नहीं गया, तो negating the negative is not enough. You have to engage it positively. जैसे कुछ जगह है वहां घास उगता है, क्या बोलते हैं फालतू घास, पार्थिनियम बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं कांग्रेस ग्रास. हम लोग वहां गए थे गांव में, तो खेत में वो सब निकाल देते. ये बोले ये कौन सा है घास, ये बोलते हैं भाजपा ग्रास. भाजपा में बोले कांग्रेस सुना, ये भाजपा कौन. बोले वो गांव वालों ने, एक कांग्रेस घास बहुत बढ़ता था तो उसको बोला देखो कांग्रेस का नाम होगा, और एक घास था वो और ज्यादा बढ़ता है, और ज्यादा समस्या है, तो बोलते उसको उनका उसका नाम उन्होंने भाजपा ग्रास दिया. तो वो उगता है हमेशा, उसको निकालते रहना पड़ता है. तो एक व्यक्ति ने क्या किया, हर बार हर हफ्ते के बाद उगता रहता है निकाल, तो उन्होंने उसको हटा के उसकी जगह दूसरा ऐसा सुंदर पौधा डाल दिया जहां से वो आने का सवाल ही नहीं. जगह खाली रहे तो कुछ ना कुछ आएगा, वो भर दिया तो कुछ जगह ही नहीं उधर. तो इंद्रियों को शुद्ध करना है तो जैसे अम्बरीश महाराज के उदाहरण में हम देखते हैं किस प्रकार से अम्बरीश महाराज ने अपने इंद्रियों को शुद्ध रखा हमेशा. आंखों को भगवान के सुंदर स्वरूप का दर्शन करके, और कानों को भगवान के सुंदर गुणगान का श्रवण करके, क्योंकि कानों की इच्छा है कुछ तो सुनना है भगवान के गुणगान सुनने में. नाक को भगवान को फूल या तुलसी लगाया हुआ सुगंध लेने में, त्वचा को भक्तों के संपर्क में आने में, पैर को भगवान की मंदिर की ओर चलने में, हाथ को भगवान का मंदिर साफ करने में, सर को भगवान के सामने झुकाने में, इस तरह से हर एक इंद्रिय तपस्या है एक्चुअली. हर रोज करना, जैसे स्नान करना तपस्या है एक्चुअली. मन की तपस्या, शरीर की तपस्या, वाणी की तपस्या. शरीर की तपस्या क्या बताई गई है, शारीरम तप उच्चते. गीता में बहुत सुंदर श्लोक है कि देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचम आर्जवम. ये शरीर की तपस्या है, भगवान के सामने प्रणाम करना, देव द्विज ब्राह्मणों को प्रणाम करना, गुरु प्राज्ञ हमसे जो वरिष्ठ हैं, पूजनम उनकी पूजा करना, प्रणाम करना, झुकना, झुकना तपस्या है. तो इस तरह से कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रियों को जब तक भगवान के संपर्क में नहीं लाते वो तपस्या. हर रोज संपर्क में लाना, हर रोज स्नान करना जरूरी है. इस तरह से हर रोज भगवान आरती करना, मंगल आरती करना, झुकना, भगवान को सजाना, तो ये जो है ये तपस्या है. पर इंद्रियां शुद्ध हो जाती है उससे. जैसा वो उदाहरण हम दे रहे थे एक बार के, आंखों से अजामिल ने एक बार देखा दृश्य जो अनुकूल नहीं था, वो उसके हृदय में बैठ गया और उस पर ध्यान करने लगा. वो ध्यान किया तो वो उसका पतन का कारण हो गया. तो इस तरह से हम प्रभुपाद लिखते हैं उस समय एक अजामिल था और एक बार बाय चांस उसने ऐसा दृश्य देख लिया. दृश्य कलयुग में तो ऐसा दृश्य हर एक जगह रहता है, एक दूसरे को गले लगाते कहीं भी बैठे रहते हैं सड़क पे, तो क्या होगा हमारा. तो एक तरीका है, जैसा एक कैमरा का फिल्म होता है उसके ऊपर अगर एक इंप्रेशन पड़ गया तो फिर वो परमानेंट हो गया, पर उसको अगर सूरज में एक्सपोज कर दे तो मिट जाता है, क्लियर हो जाता है. तो कृष्ण सूर्य समा हमारे हृदय के फिल्म में हर बार कुछ भी हम देखते हैं तो फिल्म हो गया, पर जब भगवान के सामने जाते हैं और प्रार्थना भाव से भगवान का दर्शन करते हैं तो कृष्ण सूर्य समा वो जाता है और वो रील के ऊपर फिल्म सूरज पड़ गया वॉश आउट. पर उसको ब्लैक रूम में जाके कल्टीवेट किया तो वो पॉजिटिव नेगेटिव का पॉजिटिव बन जाता है. तो ध्याय तो विषयान, क्या दृश्य था वो, क्या देखा मैंने. वही अजामिल ने वही गलती किया, उसको एक्सपोज करने के बदले उसको ब्लैक रूम में ले जाके, डार्क रूम में ले जाके, सॉल्यूशन में डाल के उसने पॉजिटिव बना दिया, फ्रेम लगा के चिपका दिया और इसीलिए उसका पतन हो गया. तो हर रोज भगवान के सामने आना, भगवान का दर्शन करना, भगवान को पूजा करना, भगवान के सामने झुकना, उनका गुणगान सुनना, ये सब जो है बहुत तपस्या है पर एक्चुअली बहुत शुद्धिकरण करता है। सो तपसा इज्जया पूजा करने से वस्तुएं शुद्ध हो जाती है और व्यक्ति जो पूजा करता है वो शुद्ध हो जाता है, ब्राह्मण शुद्ध हो जाता है। इसीलिए मंत्र भी वो बहुत जपते हैं हम लोग। पूजा तो ठीक है पर मंत्र जपना, इदम आसनम, इदम स्नानियम, इदम वस्त्रम, वो भी है, नहीं तो चलता रहेगा उधर, कुछ होगा ही नहीं असर। तो मंत्र भी है और साथ में क्रिया भी है। तो शुद्ध्यन्ति और दानई ही, दान देने से पैसा शुद्ध हो जाता, धन शुद्ध हो जाता है। अब बोलोगे धन क्या शुद्ध है, एकदम फर्स्ट क्लास क्रिस्प रिजर्व बैंक का नोट लाया मैं, ये तो अशुद्ध है ही नहीं, किसी के हाथ में अभी तक नहीं गया, सीधा मेरे पास आया, एकदम शुद्ध है वो। तो ये शुद्धता नहीं है, दिस इज मॉडर्न सिविलाइजेशन ऑफ सीइंग शुद्धता, देखो एकदम क्रिस्प नहीं, पर एक्चुअली वो अशुद्ध क्या है, किस तरह से उसने उसको तुमने कमाया, जाने अनजाने में धन कमाने में बहुत सारे अशुद्ध, वो सटल कार्मिक कंटेमिनेशन है वो। प्रतिग्रह कबुना करीबे राजधन विषय अन्न खैले मलिन हो, ऐसे पैसे भी, इसीलिए ब्राह्मण को कहा गया, मनु संहिता में बताया गया है, ब्राह्मणों को कहा गया कि ब्राह्मणों को दान देना चाहिए, पर ब्राह्मण को बोला गया उसका एक पैसा भी तू अपने लिए लगाया तो तेरा भ्रष्ट हो गया, अपनी इंद्र तृप्ति के लिए अगर वो लगाया तो वो पैसा दूषित जो है, उसको दूषित तभी दूर हो सकता है जब वो भगवान की सेवा में लगा जाए। कलयुग में सोना भी बताया गया, सोना जाना है वहां 400 हो जाएंगे, पर वही सोना को महान आचार्य भगवान की सेवा में लगाते हैं तो वो सोना कली नहीं है, उस समय कली नहीं है वो, नहीं तो कली का प्रभाव प्रवेश करता है वहां। तो शुद्ध्यन्ति दानैः, दान से धन शुद्ध हो जाता है। प्राणैर अर्थैर धिया वाचा यज्ञ दान तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम, भगवद्गीता में है, यज्ञ दान तपश्चैव, यज्ञ दान और तपस्या कभी नहीं छोड़ना चाहिए व्यक्ति को। आप बोलेंगे मेरे पास पैसा कौन सा है दान देने के लिए, दान जो भी जिसमें भी आप, यू आर वेल्दी, ब्राह्मण दान देता है किस तरह से, ज्ञान का दान, कोई धन का दान देता है, प्राणैर अर्थैर धिया वाचा श्रेय आचरणम सदा, प्राणैर कोई प्राण दे रहा है, कोई अर्थ अर्थैर धन देता है भगवान की सेवा में, प्राणैर अर्थैर धिया, कुछ के बाद और कुछ नहीं है पर समझता है सिद्धांत को, समझता है और देता है, एक ब्राह्मण जो है ज्ञान का दान देता है, वो दान दिया वाचा या वाणी के द्वारा। तो इस तरह से शुद्ध्यन्ति दानैः, दान से धन शुद्ध हो जाता है। मन कैसा शुद्ध होता है, संतुष्टिया, मन जो है संतुष्टि से शुद्ध हो जाता है। मन की, मन का कलमश क्या है, हमेशा असंतुष्ट। एक कामी व्यक्ति कभी संतुष्ट नहीं होता, और चाहिए और चाहिए और चाहिए। एक लोभी व्यक्ति, लोभ से दूषित हो गया, कभी संतुष्टि नहीं है। जो क्रोधी व्यक्ति है हमेशा क्या बोलते हैं, रिवेंज,
प्रतिशोध,
बदला लेने की प्रतिशोध, वो हमेशा दूषित हो जाता है और वो उसका मन ठीक से शुद्ध नहीं है। जैसा एक सरोवर, एक तालाब में आप ऐसा हिलाते रहेंगे उसको तो कुछ भी दिखता नहीं है ठीक से, आपका चेहरा भी नहीं दिखेगा उधर, पर उसको एकदम शांत रहने दीजिए, आपका चेहरा क्लियर आईने जैसा दिखता है, वो तालाब आईने जैसा हो जाता है। इसी तरह से जब मन शुद्ध रहता है तो हम परमात्मा की आवाज सुन सकते हैं, परमात्मा को देख सकते हैं, सर्वसचाहम मत्त स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, ज्ञान और स्मृति तब आएगी जब मन शुद्ध रहेगा। जितात्मनः पर प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः, जितात्मनः जिसने अपने मन को जीत लिया है, यानी शांत है जिसका मन, अशुद्ध नहीं है, जितात्मनः प्रशांतस्य, प्रशांत शांत है वो, परमात्मा समाहितः साफ साफ उसको भगवान का आवाज सुनाई देता है हर क्षण, और इसीलिए उसका जीवन, जैसे सुखदेव गोस्वामी महाराज, सुखदेव गोस्वामी भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकली अशांत कृष्ण भक्त निष्काम, उसे अपना भोग करने की कोई इच्छा नहीं, बिकॉज क्योंकि सुखदेव गोस्वामी महाराज पूर्ण रूप से मुक्तात्मा थे, उनको कोई इच्छा नहीं थी, और इसीलिए जैसे भगवान उनको आवाज देते थे वैसे जाते थे, और भगवान ने उनको ठीक जगह पे ठीक समय पे ले गया, बोले परीक्षित महाराज को सुना अभी तो भगवत। नारद मुनि ऐसे हैं, एक जगह आदमी बैठा है कहां भागदौड़ करेगा, कोई जरूरत नहीं है, पर भागदौड़ क्यों कर रहे हैं, नारद मुनि हमेशा एक जगह नहीं रहते, वो जहां भगवान उन्हें स्फूर्ति देते वहां जाते हैं। हम भी भागदौड़ कर रहे हैं पर अशांत मन के कारण, मन अशांति है तो अशांति हमको फोर्स करती है इधर उधर भागो। एक शांत प्रशांत आत्मा आराम से बैठा रहता है चुपचाप, तृप्त आत्मा आराम से बैठा है, वो भागदौड़ करने की जरूरत है, अतृप्ति होने के कारण लोग भागदौड़ कर रहे हैं, जो तृप्त आत्मा है ठीक है। तो मन को शुद्ध करना कैसे, संतुष्टि ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा, जिस स्थिति में भी हमें भगवान ने रखा है उससे बढ़कर और अच्छा स्थिति नहीं है, इस स्थिति में जो प्रसन्न रहता है वो उसका मन बड़ा शांत है, और वो संतुष्टि जो है, इसका मतलब ऐसा नहीं कि काम हम नहीं करना चुपचाप बैठे रहना, कर्तव्य के रूप में हम कर रहे हैं कर्तव्य, पर हमें अपेक्षा नहीं है, मां फलेषु कदाचन, हमारा कर्तव्य कर दिया, जो हमारा कोटा है, जैसे प्रहलाद महाराज कहते तुम्हारा जो कोटा है वो मिलेगा ही तुमको, तुम्हारा सुख का कोटा और तुम्हारा दुख का कोटा वो ऑलरेडी रिजर्व हो गया है, जितना भी भागदौड़ करो जो नहीं मिलना नहीं मिलने वाला, और जितना भी पकड़ के रखो जो जाना है वो जाएगा, अगर ये विश्वास रहेगा तो पॉजिटिव भगवान की सेवा में जो मनुष्य जीवन का उद्देश्य है उसमें लगेगा, नहीं तो ऐसा ही समय चला जाता है, वो अतृप्त आत्मा अतृप्त मन। सो संतुष्टिया, और फिर कहते हैं आत्मा आत्मविद्या, आत्मा कैसे शुद्ध होता है, कौन सा सोल्यूशन है जहां डाल के उसको, आत्मा किधर, यहां है तो उसको अंदर डाल के कैसे साफ किया जाए, चेतो दर्पण मार्जनम। आत्मविद्या, आत्मविद्या मतलब राजविद्या, राजविद्या क्या है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, नवदा भक्ति जो है ये इससे आत्मा शुद्ध होती है, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम, तीन गुणों से माम चयो अव्यभिचारेण भक्ति योगे न यसेवते स गुणान समति तेता, अव्यभिचारिणी भक्ति जो है वो तीन गुणों का कलमश जो है वो निकाल देता है और आत्मा को एकदम शुद्ध कर देता है। और दूसरा है लास्ट वाला संस्कार ही, संस्कार से जन्म शुद्ध हो जाता है, जन्मना जायते शूद्र, जन्म से हर एक व्यक्ति शूद्र है, शूद्र मतलब हमेशा लैमेंटिंग, प्रभुपाद जी एक जगह तात्पर्य में लिखते हैं शूद्र मतलब ऑलवेज लैमेंटिंग, हमेशा रोता रहता है, मेरे पास ये नहीं है, वो चाहिए वो नहीं है, ये था वो चला गया, न शोचती न कांक्षती, ब्रह्मभूत, जब ब्राह्मण जन्मना जायते शूद्र संस्कारात भवेद द्विज वेद पाठात भवेद विप्र ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न शोचती न कांक्षती, उसको किसी चीज की आकांक्षा नहीं है, महत्वाकांक्षा नहीं है और किसी चीज का शोक नहीं है, ये संस्कार है। संस्कार मतलब उस स्तर पर लाना हमको, ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करना, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, और जब तक ये नहीं रहेगा तब तक हमेशा शोक, रोना, ऐसा क्यों किया भगवान ने, ये क्यों नहीं दिया, ये क्यों छीन लिया, ये शूद्र है, जन्मना जायते शूद्र, और शूद्र का मतलब है नो रिफाइंड बिहेवियर, शूद्र को नहीं मालूम क्या खाना है, कब खाना है, कहां बैठना है कहां नहीं बैठना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसा बोलना है कैसा नहीं बोलना है, नहीं मालूम, संस्कार संस्कार नहीं है, संस्कारात भवेत द्विज। इसीलिए जब किसी व्यक्ति में हम, जैसे बलराम जी जब गए नैमिषारण्य में तो रोमहर्षण सूत बैठा हुआ था आसन पे, व्यासासन पे बैठ के एकदम बड़ा बड़ा प्रवचन कर रहा था। पर जब बलराम जी प्रवेश किए, पूरे जितने महात्मा ऋषिगण बैठे हुए थे सब उठ के खड़े हुए, पर रोमहर्षण, और सबने पूजा की बलराम जी की, और रोमहर्षण उठा नहीं। तब बलराम जी ने, जब व्यक्ति का व्यवहार बोलते कि ये व्यासदेव का शिष्य है, शास्त्र सब पढ़ा हुआ है, फिर भी इसको बेसिक गुण नहीं है इसके अंदर, तब उनको सोचना पड़ा इसका संस्कार क्या है पहले पुराना। नहीं तो जनरली एक वैष्णव का संस्कार हम नहीं देखते, पर जब बलराम जी ने देखा कि नहीं, इसका व्यवहार, व्यासदेव का शिष्य है, पुराणों को जानता है, पढ़ा लिखा है, पर फिर भी इसका व्यवहार, गुण, आध्यात्मिक जीवन मतलब लक्षणिक गुण से देखा जाता है, आध्यात्मिक जीवन की प्रगति गुण से देखी जाती है। विद्या ददाति विनयम, अगर गुण नहीं है वैष्णव के, वैष्णव का लक्षण क्या है, कंठी माला और तिलक नहीं, 26 लक्षण बताए गए, 26 गुण बताए गए वैष्णव के, अमानित्वम अदभ्यत्वम, भक्ति में भी, भगवदगीता में भी, पढ़ा लिखा व्यक्ति कौन है, अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा क्षांतिरार्जवम आचार्य उपासनम शौचम, लक्षण से बताया गया, यो मत भक्त समय प्रिय, यो न द्वेष्टि न कांक्षति। तो इस तरह से प्रगतिशील व्यक्ति मतलब गुण, बिना गुण के दर्शन किए, प्रदर्शित किए, हम जितना भी हम पढ़े लिखे हों, बड़े बड़े प्रवचन देते हो, लोग आकर्षित नहीं होंगे, लोग आकर्षित गुण से होते हैं। तुम्हारा व्यवहार कैसा है, तुम्हारा बोलचाल कैसा है, तुम्हारा रहन सहन कैसा है, क्यों, बड़ी सरल सी बात है। कोई मंदिर में आता है, मंदिर में आके देखता है, ओ इसको कौन सस्ता, ठीक है, और लोगों का व्यवहार कैसा है, अगर व्यवहार अच्छा हो तो बोलेगा आपका सिद्धांत क्या है मुझे सुनाओ, आप किस चीज पे विश्वास करते हो, मैं पुस्तक पढ़ना चाहता हूं, क्योंकि वो क्या आपने पढ़ा है जिसके कारण आपका व्यवहार ऐसा है, आपस में आप दोनों का इतना, आपस में आप लोगों का प्रेम इतना है, आप लोगों का लक्षण ऐसा है, एक एक व्यक्ति भी यहां कितना, मतलब उनका बोलचाल रहन सहन सब इतना, बोले जो तुम लोग प्रैक्टिस कर रहे हो मैं प्रैक्टिस करना चाहता हूं, पुस्तक पूरा खरीद के जाएगा वो। पर अगर आएगा और हम लोग फिलॉसफी सुनाएंगे, बोलेगा वाह क्या फिलॉसफी है, और बाद में देखिएगा कि दो भक्त आपस में एक दूसरे को मुक्का मार रहे हैं, खून निकल रहा है, एक दूसरे के प्रति मतलब व्यवहार ऐसा है, और उसके बाद बोलेंगे ये पढ़िए भागवतम, इसके अंदर सब कुछ दिव्य ज्ञान है, बोला नहीं चाहिए, तुम इतने सालों से पढ़ रहे हो और पढ़ने के बाद ऐसा व्यवहार करते हो, तो इतना पढ़ने के बाद यही होने वाला है, तो नहीं भाई तुम ही रखो पढ़ो, क्या फायदा ऐसा तुम्हारा इतना इतना ज्ञान प्राप्त करके, क्योंकि फल है ना परिचीयते, ये अगर फल है 12 साल पढ़ने के बाद तुम्हारा ये फल है तो मैं क्यों 12 साल बर्बाद करूं। पर अगर कुछ भी नहीं कहता हो, एक प्रचार करने की भी जरूरत नहीं है, कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है, कृष्ण भगवान है, पर वो देखता है कि आपस में कितने प्रेम से भगवान की सेवा कर रहे हैं, कितने नम्र से सेवा कर रहे हैं, बोलते इस संस्था से मैं जुड़ना चाहता हूं, फिर आप जो भी बोलोगे उसको स्वीकार करेगा, जो भी बोलोगे, नहीं तो फिर नहीं। और वो संस्कार है, संस्कार का मतलब संस्कृत रिफाइनमेंट, आहार निद्रा भय मैथुनम च समन्वयेतत् पशुभिर् नराणाम, खाना पीना सोना बच्चा पैदा करना, वो तो पशु भी कर रहे हैं हम भी कर रहे हैं। व्हाट डिफाइन्स, युक्त आहार विहारस्य, युक्त कर्म से चेष्टसा, युक्त स्वप्नावबोधस्य, युक्त आहार, क्या खाना है, कब खाना है, कैसा खाना है, कैसे बैठना है, कैसे नहीं बैठना है, कैसा उठना है, कैसा, दिस इज आचार. चैतन्य लीला इज नथिंग बट रिफाइंड रिलेशंस विद डिवोटीज. चैतन्य लीला में पढ़िए किस तरह से सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी का व्यवहार, किस तरह से महाप्रभु के साथ उन लोगों का व्यवहार, महाप्रभु भक्तों के साथ किस तरह से व्यवहार करते हैं, कितना सूक्ष्म, हाउ सुपर सेंसिटिव. भक्त मतलब सुपर सेंसिटिव. विदुर महात्मा है, उनको मालूम है कब किसको क्या बोलना चाहिए. विदुर को मालूम था कि भगवान गुजर गए हैं, भगवान धरातल छोड़कर भगवत धाम चले गए हैं. जब वो आया, महात्मा विदुर जब आए हस्तिनापुर में, वो जानते थे, अभी तक अर्जुन नहीं आया था हस्तिनापुर द्वारका से, युधिष्ठिर महाराज को मालूम नहीं था, पर विदुर को मालूम था क्योंकि वो भ्रमण करके आए थे. पर वो बोले कि वैसे भी तो युधिष्ठिर महाराज को पता लग जाएगा, मैं क्यों उनको दर्द पहुंचाऊं ये खबर देके. विदुर जानते थे पर उन्होंने युधिष्ठिर महाराज को बोला नहीं कि भगवान धरातल समाप्त हुए, बोले पता चलेगा उसको कैसे भी. हाउ सेंसिटिव ही वॉज टू इवन डिलीवर दिस न्यूज, ही डिडंट टेल. क्यों उसको अननेसेसरी दुख पहुंचाना, वैसे भी तो ये खबर पहुंचेगी. पर वही विदुर धृतराष्ट्र को ऐसे कठोर शब्द में बोले मानो छुरी लेके एकदम हृदय में घुसा दिया. दोनों वॉज बॉर्न आउट ऑफ कंपैशन एंड दोनों व्यवहार वॉज बॉर्न आउट ऑफ व्हाट इज बेस्ट सूटेड फॉर दिस पर्सन एज ए सर्विस. आई वॉन्ट टू सर्व दिस पर्सन. This is Vaishnavism. Bhagavatam is nothing but activities of Prahlad Maharaj. How he behaved, how he interacted with the devotees, with the Lord, with the sages. Ultimately, spirituality is borne out by qualities. Ultimately, 76%, 78% Krishna consciousness. Spirituality means to become Krishnaized. Krishnaized matlab, Krishna is full of good qualities. So we are minute. Jitana shuddh honge, utana Krishna ke jo lakshan hai, wo prakat honge. Therefore, ultimately, ye jo achar, Vaishnava achar ityadi hum kehte hain, this is the basis of sanskar. That's exactly what sanskar is. Impressions. Aur isiliye, the whole process, Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita, is nothing but dealings amongst devotees. Refined, susanskrit. And therefore, studying is so important. Studying this and understanding it, living by it, itana mahatvapurna hai. To yahan Nanda Maharaj is tarah se bahut malum tha. अब क्यों कर रहे हैं, क्या उनको मालूम नहीं था, ब्राह्मणों को बुलाए, इनको बुलाए, उनको बुलाए, खूब खिलाए, दान दिए. क्यों? नंद महाराज ने नंदोत्सव किया, दो ही उनका उद्देश्य था बस. व्हाट इज द पर्पस ऑफ जात कर्म संस्कार, ये संस्कार वो संस्कार, इतने सारे वैदिक रिचुअल्स हैं, उसका उद्देश्य दो ही है. अगले श्लोकों में आता है, विष्णु आराधनार्थाय स्वपुत्रस्य उदयाय च. ब्राह्मणों को सूतमागत वंदिनः, ब्राह्मणों को बुलाया, मंगलमय वाद्य रचने को बोला, और इन लोगों को बोला आप कथा सुनाओ, और गोलों को दान दिए. इसका सहारा करने का एकमात्र उद्देश्य था विष्णु और आराधनार्थाय, भगवान विष्णु को प्रसन्न करना. धर्म सुनुष्ठित पुंसाम संसिद्धिर हरितोषण, सुनुष्ठित धर्म से संसिद्धिर हरितोषण. अगर भगवान प्रसन्न नहीं हो रहे हैं तो जितना भी नियम सब पालन कर रहे हैं, और भगवान को कैसे प्रसन्न करे, हमको नहीं मालूम भगवान प्रसन्न हुए या नहीं हुए। जैसे प्रसाद और भगवत प्रसाद, और उन्हें मालूम था ऐसे ब्राह्मण है सूत अमाग वंदना, और उनके लेवल के अनुसार उनको प्रसन्न किए। विद्या उपजीविना, तो बहुत ज्यादा विद्वान है जो जानते हैं कृष्ण को कैसा प्रसन्न करना है, उनको प्रसन्न करो तो कृष्ण प्रसन्न हुए। रूपा जी तत्व ने लिखते हैं, नंद महाराज ने चैरिटी भी अकॉर्डिंग टू देयर लेवल्स, विष्णु पेट के समान है और उनके प्रतिनिधि मुंह के समान। पेट में डायरेक्टली डाल सकता है कोई, ऐसा जिप खोल के पेट में घुसा दिया, नहीं, जो भी पेट में डालना है मुंह में ही डालना है, और मुंह कुछ नहीं रखता, मुंह में जो भी डालता पेट में ही जाता है वो, पर मुंह के अलावा और कहीं से डाले तो वो गलत है अविधि पूर्वकम। तो यस्य प्रसादात भगवत प्रसाद, इसीलिए एक्चुअली अगर गुरु और वैष्णव हमसे प्रसन्न है तो हमको समझ लेना है कि कृष्ण प्रसन्न है। आपको जाने की कंफर्म करने की जरूरत नहीं कृष्ण से पूछने की प्रभु प्रसन्न हो कि नहीं, नहीं। अगर वैष्णव प्रसन्न है और गुरु प्रसन्न है तो निश्चित रूप से आप जान लो कि भगवान प्रसन्न है। तो उनको प्रसन्न किया पहले उन्होंने, और स्वपुत्रस्य उदयाय च, उनका एकमात्र उद्देश्य था कि मेरे बच्चे, ऑफ कोर्स नंद महाराज इतना प्रेम था उनको नहीं लगा कि यही विष्णु है, नहीं तो उनको ही खिला देते सीधा पर योग माया ने ढका था, नहीं तो फिर सब लोग ऐसा पूजा करते रहेंगे फिर लीला ही नहीं होगा कृष्ण लीला, तो योग माया ढके हुए थे, नहीं नहीं मेरा, मेरे बच्चे को ज्यादा से ज्यादा आशीर्वाद मिले, बस ये सारा बड़ा बड़ा कार्यक्रम करने का उद्देश्य ही था, भगवान प्रसन्न हो और मेरे बच्चे को बहुत आशीर्वाद मिले, खुशी से रहे, लंबी आयु जिए, बस वैदिक तरीका भगवान को प्रसन्न करना, और जो भी हम कार्य कर रहे हैं वहां सबसे ज्यादा कृपा मिले, वहां आशीर्वाद मिले, उस कार्य पे, उस प्रोजेक्ट पे, उस बच्चे पे, उस एंडेवर जो भी हमने कार्य लिया है, तो सारा वैदिक जो रीति रिवाज है उसका उद्देश्य ही। तो इस तरह से यहां नंद महाराज ने इस उद्देश्य से विष्णु और आराधनार्थाय स्वपुत्र से उदय आयोजा, उनकी भलाई के लिए और भगवान की प्रसन्नता के लिए यह नंदोत्सव मनाया। हो बिग, बहुत बड़ा नंदोत्सव, पर दो ही मात्र उद्देश्य था, भगवान प्रसन्न हो, सारे वैष्णव प्रसन्न हो और हमें ज्यादा से ज्यादा आशीर्वाद मिले हमारे कार्य में। हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की जय। कोई प्रश्न, टीका टिप्पणी? नेमी शरण जैसे ही लग रहा है बहुत सुंदर है, अच्छा अनुकूल है, सूरज भी जितना ही चमकना है उतना ही प्रभु जी
कलयुग में जो प्रथा प्रचलित है पार्ट ऑफ इट, कि जितना धन कमाओ कैसे भी कमाओ उसका 1/6 भगवान को दो तो बचा हुआ सब शुद्ध हो जाता है, तो ऐसे लोगों का क्या गति होगी? भगवान को लगाते हैं लेकिन उनकी भावना कुछ अलग होती है, उनकी भावना उस धन को, बचा हुआ धन जो है उसको भोगने की होती है।
अलग अलग स्तर से, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, देखिए कोई भगवान के पास जाता है कि मेरा दुख दूर हो जाए, भगवान मैं इसलिए आ रहा हूं क्योंकि मुझे दुख है, मेरा दुख दूर होना है बस, और मेरे को पता चला किसी ने बोला कि आपके पास जाना है इसलिए मैं आया हूं, एटलीस्ट सही चतुर्विधा भजन्ति माम जना सुकृति में जना, चला अच्छा है, बेटर, और दूसरा व्यक्ति आ रहा है, कह रहा है कि बहुत दुख है, मैं आपकी शरण आ रहा हूं, पर मेरा उद्देश्य है आपकी शरण आना, क्योंकि आपकी शरण आऊंगा तो दुख या सुख अल्टीमेटली वो जो भी है अच्छा ही है, इसीलिए मैं इस दुख की स्थिति में आपकी शरण आ रहा हूं, क्योंकि अंत में मैं आपकी शरण आना चाहता हूं, वो परमानेंटली मुझे दूर कर देगा सारे दुखों से। तो दो व्यक्ति आ रहे हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सतैव भजाम्यहम, तो उनका प्रगति भी उतना ही होगा जिस भावना से आते हैं। तो इट डिपेंड्स, एक व्यक्ति कहता है कृष्ण को अपना बिजनेस पार्टनर बनाया हो, कभी कभी लोग तिरुपति जाते हैं, उन्होंने पार्टनर बना के रखा है, इतना चोरी का माल है तू भी ले ले, तू भी दोषी है, बाद में मेरे को बोलना मत, पैसा मैंने दिया है। सो दैट इज बेटर देन नॉट डूइंग एनीथिंग बट नॉट द बेस्ट। सो उसपे भी अलग अलग भक्ति विनोद ठाकुर तीन स्तर बताते हैं, यत करुष ये दक्षिणाश ये जोश यत कुरुष तत्कुरुष मद अर्पणम, ऐसा अपर्ण करना। और बोलते हैं एक ने अपने इंद्र तृप्ति में भगवान को भागी बनाया है, दूसरा अपना बिजनेस पार्टनर बनाया है, इंद्र तृप्ति का तू भी एक पार्टनर है, और तीसरा जो कहता है कि आप मालिक हो, मैं आई एम जस्ट दी केयरटेकर। तो तीनों में अंतर है, तीनों में अंतर है। एक दारू पीते वक्त भी कृष्णार्पण वस्तु, तीन बार ऐसा करेगा बाद में पिएगा, तीन भुवन विश्व देवताय नमः, इसको भी नमः, भूमि देवी नमः, उसके बाद पिएगा ताकि ज्यादा नहीं चढ़े। अरे का अपना अपना। तो श्रद्धा 17वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि वो कैसा श्रद्धा है, त्रिविधा भवती श्रद्धा। पहले 16वें अध्याय में बोले कि दो प्रकार का होता है, अश्रद्धालु और श्रद्धालु। जो यम शास्त्र विधि मुत्सृज, शास्त्र के विरुद्ध जो करता है ना वो आसुरिक है, और शास्त्र के द्वारा जो कुछ भी करता है वो सुर। पर कुछ बोले, देखो अर्जुन पूछता है, पर कुछ लोग शास्त्र का पालन नहीं करते, पर कुछ तो श्रद्धा है उनके अंदर, अपने तरीके से करेगा, यहां से जाएगा कुछ तो अपना नारियल फोड़ेगा, कुछ तो एक फूल तोड़ के घर लगा, कुछ तो करेगा अपना, शास्त्र नहीं उसको स्फूर्ति मिला कर दिया उसने, और करेगा रेगुलरली करता रहेगा, पीने से पहले उसको ऐसा सर बार तीन बार लगाएगा, उसके बाद ही पिएगा, कुछ तो, दैट इज सम श्रद्धा। वो भगवान बोलते हैं 17वें अध्याय में तीन प्रकार की श्रद्धा है, सत्वगुणी श्रद्धा, रजोगुणी श्रद्धा, तमोगुणी श्रद्धा। तमोगुणी मतलब भूत प्रेत, ऐसा लोगों को पेड़ में भूत रहता तो उसको पूजा करना। रजोगुणी श्रद्धा मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में हिटलर का पूजा करते थे वो लोग, या कुछ लोग फिल्म स्टार की पूजा करते, एक्चुअली मंदिर बना के उनकी पूजा करते, बिग गन्स ऑफ कोटोइंग द बिग गन्स ऑफ सोसाइटी प्रभुपाद राइट्स लीडर्स, उसकी चमचागिरी करते हैं, उसको पूजा करते हैं। दक्षिण भारत में है ऐसा, मद्रास फिल्म एक्ट्रेस का उसको उन्होंने मंदिर बनाया, सेम आरती जो हम लोग यहां करते हैं वैसा ही। तो श्रद्धा है, किसी को कहीं तो इम्पोज, दे हैव इम्पोज देयर फेथ, बट इट विल नॉट बेयर द फुल रिजल्ट बिकॉज इट इज प्लेस्ड इन अ रॉन्ग प्लेस। तो कुछ तो है पड़ेगा, पर मे नॉट बी फुल बेनिफिट। देयर फॉर शास्त्र, यस तस्मा शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार व्यवस्थित, शास्त्र में भी अलग अलग स्तर है। तो अल्टीमेटली ये था माम प्रपद्यन्ते, और धीरे धीरे हमको बढ़ाना चाहिए। एक्चुअली अहैतुकी अप्रतिहता नंबर वन, नंबर टू इज इट शुड बी अधोक्षजे सवई पुंसाम परो धर्म, क्योंकि कुछ तो धर्म धार्मिक काम कर रहा है अपनी, और तमोगुणी व्यक्ति भी धार्मिक काम करता है, डाकू लोग भी धार्मिक काम करते हैं, अमीरों को लूटते गरीबों को, तू कौन है, तू भगवान है क्या, किसको लूटना है किसको देने का है, अपने अपने कर्म के अनुसार भगवान दे रहे हैं, तो नहीं मैं इनको लूटूंगा इनको दूंगा, वो अपना धर्म बनाया उसने, जितना भी लूटूंगा एक चौथाई गरीबों को, वो अपने धर्म है, कुछ तो उसने रूल बनाया, ठीक है, तो इजी पायस, रावण का रूल था ऐसे ऐसे स्थिति में मैं नहीं करूंगा, इतना तो करूंगा पूजा. सो इट वॉज ऑल विम्सिकल, इट वॉज ऑल विम्सिकल. सो विम्सिकल विल गिव विम्सिकल रिजल्ट, इट विल नॉट गिव द करेक्ट रिजल्ट. But something is better than nothing. But ideally, you should go to that level. Yes, Prabhu. Actually, the whole thing is tapasya. Everything is tapasya. क्योंकि मन को संतुष्ट रखना तपस्या है. सामने पड़ा हुआ है भोग की वस्तु, पर नहीं आज एकादशी खा नहीं सकते, आज तपस्या है. तपस्या means what is actually tapasya? Tapasya means voluntarily accepting inconvenience for a higher interest. So everything is tapasya. दान देना तपस्या है. किसको? अरे खून पसीना एक करके बड़ी मुश्किल से लाया है, अभी बोलते दे दो. बहुत तपस्या है वो, बट इनकन्वीनियंस. स्नान करना ठंडी में खास करके, अरे बार बार स्नान करना जरूरी है क्या? कर लिया ना हफ्ते में एक बार, संडे को कर लिया ना घिस घिस के एकदम फर्स्ट क्लास. नहीं, स्नान करना जरूरी है. इट्स ऑल तपस्या एक्चुअली. Actually, the whole, that's why tapo divyam putraka. Or what is the best tapasya? Aradhito yadi haris tapasatataki. Na aradhito yadi haris tapasatataki. Hiranyakashipu ne bahut tapasya ki. Koi bhakt utna nahi kiya hoga. But his tapasya was ugra tapasya. Tamoguni tapasya. Simply hurting the body, troubling the Paramatma in the heart. And his own. Whereas Prahlad Maharaj ne ko tapasya ne, but he was the greatest tapasvi. What was that tapasya? He was always worshipping the Lord. Krishna says, na ham vedair, na tapasa, na dane, na cha ijjaya. Ye jo jo hai sab na bol diye Bhagwan. So aradhito yadi hari tapasa tatakim. Agar hari ki aradhana kar rahe ho to tapasya karne ki zarurat nahi. Iska matlab kya hua? हरि की आराधना ही सबसे बड़ी तपस्या है. दूसरा सारा तपस्या बिना हरि की आराधना से आपका अहंकार को बढ़ा देगा. और सबसे बड़ी तपस्या क्या है? अपना अहंकार को नष्ट करना. तृणादपि सुनिचेन तरोरिव सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि. और आराधना करना हरि की, तो ये चार चीज सबसे बड़ी तपस्या है. इसीलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि हरिनाम के क्या बोलते हैं वो, कंठी माला में तृणादपि का लॉकेट लगा दो और गले में परमानेंटली पहन के रखो इसको, कुत्ते के समान. निकालने का नहीं, निकाला तो कोई भी पकड़ के ले जाएगा, कॉरपोरेशन का आदमी ले जाएगा उसको. तो द ओनली तपस्या इज आराधितो यदि हरि, कीर्तनीय सदा हरि. और वो करने के लिए सबसे बड़ी तपस्या क्या? हु कैन डू इट ऑलवेज? तृणादपि सुनिचेन तरोरिव सहिष्णुना अमानिना मानदेन. देयरफॉर दिस इज दी तपस्या. एंड न आराधितो यदि हरि तपसाता था, तो क्या फायदा इतना सब तपस्या करके? नाक तपका कि तुमने सर पे बैठा, सर पे खड़ा हुआ, पर क्या हुआ? अहंकार हो गया, मैं सर पे चलता हूं, लोग पैर पे चलते, मैं सर पे खड़ा हूं. तो कौन सा बड़े काम किया? अगले जन्म में भगवान ऐसा शरीर देंगे, सर पे चलता रहेगा, तो वटवा को जैसा लटका देंगे उल्टे. लटके रहे ठीक है, इतना इच्छा है तेरे को सर पे चलने. तो रियल तपस्या इज टू please the Lord, is to please the Lord. And what pleases the Lord? Bhaktyamam. Krishna is pleased by bhakti, navada bhakti, shravanam, kirtanam, vishnu. This is the biggest tapasya. Therefore, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur sometimes emphasizes, if you are not able to do that, don't worry. Make sure that you are rendering devotional service. Other tapasya, some people's body may not be conducive. Theek hai, mat tapasya karo. सबसे बड़ी तपस्या क्या है? इतना तपस्या करके अहंकार हो गया कि मैं इतना तपस्वी हूं, और ये लोग देखो कैसा खाते रहते. गया ना, खत्म आपका तपस्या पूरा खत्म. टू बी हम्बल इज द बिगेस्ट तपस्या एंड टू सर्व हम्बल सर्विस टू द लॉर्ड एंड एवरीथिंग इन रिलेशनशिप विद द लॉर्ड इज द बिगेस्ट तपस्या एंड इफ समवन हैज डन दैट न तपस्या आई एम नॉट अट्रैक्टेड बाय ऑल एनी अदर तपस्या चैतन्य महाप्रभु की लीला में है वो सिर्फ दूध पीने वाला ब्रह्मचार शिवाज ठाकुर को बोला मेरे को अंदर ले लो अरे मैं सिर्फ दूध पीने वाला हूं शिवाज ठाकुर ने बोला हाँ सही बात है जिंदगी भर सिर्फ दूध और फल खाया है और कुछ नहीं नो ग्रेन अंदर ले लिया महाप्रभु कीर्तन शुरू किया और बोले कि आज कुछ आनंद नहीं आ रहा है जो यहां नहीं होना चाहिए वहां है शिवाज ठाकुर बोले नहीं यहां कोई अभक्त नहीं है बोले नहीं और भी कोई है फिर बता दिए नहीं नहीं शुद्ध दूध पीने वाला अरे दूध पी के भगवान प्राप्त होते तो मैं लीटर लीटर दूध पीता हूं निकला इसको निकाल रहा इसको इतना गुस्सा हो गया डर के मारे भाग गया वो वहां से बाहर से पर जाते जाते बड़े कृतज्ञता पूर्वक सोच रहा था कि कम से कम महाप्रभु ने कम से कम उनका एक क्षण तो कुछ क्षण तो कम से कम मुझे दर्शन मिला ही वॉज सो ग्रेटफुल बिकॉज ही वॉज हम्बल कुछ लोग थे ऐसे एक ब्राह्मण था बोले मेरे को नहीं छोड़ते तुम लोग अपने आप को बहुत समझते हो मैं शाप देता हूं सो प्राउड ओनली द हम्बल कैन अटेन द किंगडम ऑफ गॉड भुरीजन प्रभु कहते हैं द पैथ बैक होम बैक टू गॉड इट इज सो नैरो दैट देयर इज नो प्लेस फॉर ए फैट ईगो लाइक यू इट विल गेट स्टक सुई में अगर एक धागा डाल रहे हो धागा में इतना बड़ा गांठ बांध दिया तो कैसे घुसेगा वहां तो इतना बड़ा ईगो लेके हम घुसने जाएंगे इतना ही छोटा जगह है वो दैट्स व्हाई इवन जीसस क्राइस्ट सेड दैट इट इज इजी फॉर ए कैमल टू गो थ्रू द आई ऑफ ए नीडल देन फॉर ए रिच मैन टू एंटर द किंगडम ऑफ गॉड जन्मेश्वर शुद्ध श्री भीर एधमान मद जिसको अहंकार है वो जा ही नहीं सकता तो ये अहंकार को दूर करना सबसे बड़ी तपस्या बस अब नम्र हो गया तो ऑब्वियसली हमेशा आप आश्रय लेंगे भगवान की भक्तों की गुरु की वैष्णव की हरिनाम की तो दिस इज दी तपस्या एवरीथिंग इज तपस्या बट ऑल दिस इज यूजलेस स्नान करेंगे ये करेंगे सब करेंगे पर अगर वो भगवान को प्रसन्न नहीं कर रहा है तो श्रम वही केवलम श्रम हो जाएगा हरे कृष्ण वन लास्ट क्वेश्चन ओके 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 यस बालकृष्ण प्रभु इज एक्चुअली वी बोथ गॉट